Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Radha Srivasati Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Radha Srivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Krishna Hare, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Radha Vrindavan Chanda, Radha Vrindavan Chanda Radhe. Jaya Jagannatha, Jaya Jagannatha, Jaya Baladeva, Jaya Sumatra. Jaya Garanita, Jaya Garanita, Garanita, Jaya Garanita. Srinivasa Govinda, Sri Venkatesa Govinda, Srinivasa. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Netai Gaura Haribo,
Jai Vishnu Pada Paramahansa Parivarta Vashto Tarashat Ave Charana Arvinda Bhakti Vidanta Swami Shri Prabhupada Narayati Jai Ananta Koti Vashnavinda Jai Grantara Shmat Bhagavatam Mahapuranti Jai Nitai Gaura Premanande Om Nama Bhagavate Vasudevaya
Om Nama Bhagavate Vasudevaya
ॐ नमः भगवते वासुदेवाय, ॐ नमः भगवते वासुदेवाय, नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत से पाठ स्कंध 4 अध्याय क्रमांक 28 श्लोक संख्या 2। त एकदा तु रभसा पुरंजना पुरीं नृपा रुरुद्धर ब्रह्म भोग्याधाम जरत पनंग पालितम् त एकदा तु रभसा पुरंजना पुरीं नृपा दुरुद्धर भौम भोगाभ्याम जरत पनग पालितम् त एकदा तु रभसा पुरंजना पुरीं नृपा रुरुद्धर भौम भोगाभ्याम जरतापनग पालितम्। एकदा तु रभसा पुरंजना पुरीं नृपा जरता पनंग पालितम् स एकदा तु रभसा पुरंजना पुरीं नृपा रुरुद्धरा भौम भोगाधाम जरता पन्नग पालितम्। माता शब्दार्थ ते वे एकदा एक बार तो तब रभसा अत्यंत वेग से पुरंजनपुरीम पुरंजन की नगरी को नृपा हे राजा रुरुद्धो घेर लिया। भौम भोग आढ़यम इंद्रिय भोग से परिपूर्ण जरत बुढ़ा पन्नगा सर्प द्वारा पालितम सुरक्षित। अनुवाद उत्तापर्य कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणार्विंद स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा श्री प्रभुपाद की। अनुवाद एक बार इन भयानक सैनिकों ने पुरंजन नगरी पर बड़े वेग से आक्रमण किया। यद्यपि यह नगरी भोग की सारी सामग्री से परिपूर्ण थी किंतु जिसकी रखवाली एक बूढ़ा सर्प कर रहा था। तात्पर्य, इंद्रिय तृप्ति में संलग्न रहने से शरीर दिन प्रतिदिन जर्जर होता जाता है, अंत में शक्ति इतनी क्षीण हो जाती है कि इसकी तुलना बूढ़े सर्प से की जाती है। पहले ही प्राण की तुलना सर्प से की जा चुकी है। जब शरीर के भीतर का प्राण क्षीण होने लगता है तो शरीर भी क्षीण हो जाता है। इस समय मृत्यु के लक्षण चारों ओर मंडराने लगते हैं, अर्थात यमराज के भयानक दूत दिखने लगते हैं और घोर आक्रमण करने लगते हैं। वैदिक प्रथा के अनुसार ऐसी अवस्था प्राप्त होने के पूर्व ही मनुष्य को घर छोड़कर ईश्वर के संदेश का उपदेश करने के लिए आजीवन संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए। किंतु यदि मनुष्य घर पर रहता है और उसकी प्रिया पत्नी तथा पुत्र उसकी सेवा करते हैं तो इंद्रिय तृप्ति के कारण वह निश्चय ही क्षीण होता चला जाता है और जब अंत में मृत्यु आती है तो ऐसा मनुष्य अपने पीछे आध्यात्मिक संपत्ति विहीन शरीर छोड़ जाता है। वर्तमान समय में तो बूढ़ा से बूढ़ा व्यक्ति भी अपने परिवार को नहीं छोड़ता। वो अपनी पत्नी, बच्चों, धन, ऐश्वर्य, घर इत्यादि से बंधा रहता है। इस प्रकार जीवन के अंतकाल में मनुष्य को चिंता रहती है कि उसकी पत्नी की रक्षा कैसे होगी और वो परिवार को कैसे संभालेंगी। इस प्रकार सामान्यतः मृत्यु के पूर्व लोग अपनी पत्नी के विषय में सोचते हैं। भगवद गीता के 8वां अध्याय 6 नंबर के अनुसार, यम यम व्यापी स्मरण भातम तजन्ते तकलेवरम तम तन्मेति कुंतेया शला सद्भावितः। मरते समय मनुष्य जिस किसी स्थिति के विषय में स्मरण करता है उस स्थिति को वो निश्चय रूप से ही प्राप्त करता है। जीवन के अंतकाल में मनुष्य सोचता है कि सारे जीवन में उसने क्या क्या किया और इस तरह जीवन के अंत में उसके जो भी विचार तथा इच्छाएं होती है उसी के अनुसार उसे दूसरा शरीर देहांतर प्राप्त होता है। जो जीवन भर घर में ही लिप्त रहता है उसके लिए स्वाभाविक है कि अंतकाल में अपनी प्राण प्रिय पत्नी के विषय में सोचे। अतः अगले जीवन में उसे स्त्री का शरीर प्राप्त होता है और साथ में उसे पुण्य या पाप कर्म का फल भी मिलता है। इस अध्याय में राजा पुरंजन द्वारा स्त्री धाव प्राप्ति के विषय में विस्तार से बताया गया है। ओम ज्ञान किंरंधस्य कानंद सदाकय चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदामहं हरांचितापदांचितं वंदेहं श्रीगुरो स्युतापदकमलं गुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथं हितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनाश्रितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदा सहगनाथिता श्रीविशाखाच नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले नते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमाप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरतिशे नमः। कृष्णरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्ते तप्तकाञ्चन घोराङ्गी वृंदावेश्वरी ज्ञानोषधिदेवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुवश्च कृपासिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्रीअद्वैतगदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कं करति वाचालं प्रंगुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपे वन्दे श्रीगुरुदिनतां परमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्यं हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवतम की कक्षा में आप सबके हार्दिक स्वागत है। और यहाँ पे वरिष्ठ वैष्णव में रामनीते प्रभु सुंदरश्याम प्रभु बलदेव प्रभु उनके चरण में कृपा की भिक्षा करते हुए सो ये पुरंजन उपाख्यान कई दिनों से हम सुनते आ रहे लगभग चौथा अध्याय के 25वां अध्याय से 25, 26, 27 और ये अभी 28 अध्याय चल रहा है, शुरुआत है। इस अध्याय का शीर्षक है कि अगले जन्म में पुरंजन को स्त्री होने की प्राप्ति। कल हमने पहला श्लोक चर्चा किए थे। नारद मुनि ने आगे कहा है, राजा प्राचीन वरिष्ठ तत्पश्चात यवनाज साक्षात भय प्रज्वर काल कन्या तथा अपने सैनिकों सहित सारे संसार में विचरने लगा। तो इसमें दूसरा श्लोक में बताया गया कि एक बार इन भयानक सैनिकों ने पुरंजन नगरी पर बड़े बेग से रभसा अत्यंत बेग से आक्रमण किया। यद्यपि यह नगरी भोग की सारी सामग्री से परिपूर्ण थी, किंतु इसकी रखवाली एक बूढ़ा सर्प करा रहा था। तो ये पुरंजना उपाख्यान जिसे शास्त्र में बताया गया कि तीन प्रकार से शास्त्र को समझना होता है, श्रुतेन अंजेन और ये जैसे यहाँ पे पुरंजन उपाख्यान जैसे श्रुति जो शास्त्र है वहाँ पे जो आदेश जाते हैं जो निर्देश जाते हैं जैसे गुरु अपने शिष्यों को बताते हैं या कोई मालिक अपने नौकर को बताते कि आप ये करो, तो उसको ये प्रश्न नहीं पूछता थे कि मुझे ये क्यों करना है। तो उसको श्रुति मानते हैं, श्रुति शास्त्र में जो आदेश है। फिर बताया जाए कि अर्थ है ना, तो कोई अगर व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता है तो फिर उसको दूसरे तरीके से समझा जाते थे शास्त्र। अर्थ है ना किसी प्रकार का एक पुराणिक कहानी के माध्यम से, तो क्योंकि उसका बुद्धि इतना परिपक्व नहीं होता इसलिए नहीं समझ सकता है। जिस प्रकार दो मित्र के कभी चर्चा होती है, शास्त्र की चर्चा होती तो किसी पुराण इतिहास के माध्यम से उसको समझा जा सकता है। लेकिन कोई अगर व्यक्ति बहुत ही जैसे यहाँ पे बताया कि इंद्रिय तृप्ति से संलग्न रहने से बहुत ही अगर इंद्रिय तृप्ति में मग्न है तो उसी को, क्योंकि उसका बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो गया, जैसे भगवत गीता में भगवान बताते कि चार प्रकार का जो श्रेणी के जो लोग हैं जो मेरे शरण में नहीं आते हैं। तो इस प्रकार व्यक्ति को समझाने के लिए यहाँ पे नारद मुनि जिस प्रकार ये जो पुरंजना उपाख्यान के एलेगरी के माध्यम से उसको समझाने के लिए कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे हम कई दिनों से सुनते आ रहे हैं कि जो एक बार एक इन भयानक सैनिकों ने पुरंजन नगरी पर बड़े बेग से आक्रमण किया, तो काल कन्या
जो बुढ़ापा का स्वरूप है जरा, और उसके साथ प्रजर, प्रजर मतलब भय, और उसके साथ कई सारे शैन्य, तो वहाँ पे शैन्य मतलब बीमारी। जो बुढ़ापा आता है जन्म और बुढ़ापा, फिर बीमारी, फिर अंत में मृत्यु आती है। तो जो व्यक्ति को बुढ़ापा आता है, जैसे यहाँ पे अभी हम सुन रहे हैं कि नारद मुनि के माध्यम से अभी जो पुरंजन जो है इसको करीब करीब वो 50 साल पूरा कर चुका था, मतलब 50 साल से ऊर्ध, मतलब बिल्कुल बूढ़े हो गए, उसके शरीर जो क्षीण हो गए, उसके जो इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय बिल्कुल शिथिल हो गए। तो यहाँ पे इसलिए बताया कि पहले ही प्राण की तुलना सर्प से की जा चुकी है। जब शरीर के भीतर का प्राण क्षीण होने लगता है तो शरीर भी क्षीण हो जाता है। अत्यंत इंद्रिय तृप्ति के कारण ऐसे ही शरीर उसका शिथिल हो जाता है, तो सारे शक्ति क्षीण हो जाता है। इसलिए यहाँ पे बताया कि जरत पन्नग पालितम, हालांकि एक्चुअली जो सर्प था उसके देश शरीर जो जिसके प्राण के साथ तुलना किया गया, वो देखभाल कर रहा था। जैसे कोई व्यक्ति जवानी में वो किसी को भी मानता नहीं, मतलब किसी का भी ख्याल नहीं रखता, वो केवल उसका जीवन का देह यही होता कि मैं केवल इंद्रिय तृप्ति करूंगा, क्योंकि ये वैसे इंद्रिय किस लिए दिया गया और इंद्रिय भोग की सामग्री है। इसलिए हम जब कभी जाते प्रचार के लिए, ग्रंथ के वितरण करने के लिए, तो लोग आप बताते कि अभी ये समय नहीं है, है ना, अभी मुझे आनंद लूटने लो। या कभी हम देखते हैं कि हमारे गृहस्थ परिवार में भी उनके बच्चे को अगर कृष्ण भाव नमत्य भावित के लिए प्रेरित किया जाता है, तो भी इस प्रकार का जवाब देते हैं कि देखो आपने जवानी में आपने बहुत आनंद लिए, अब हमको क्यों आपने बचपन में अभी दिए थे, जब हम बूढ़े पे हो जाएंगे, जब हमको होश आएगा, तभी हम भी अपने आप कृष्ण भावना मत में आ जाएंगे एक्चुअली, है ना। तो लेकिन कहने का कि जो गलती हमने की है आपको गलती नहीं करना चाहिए। मित्र तो इस प्रकार यहाँ पे उसके जो प्राण था, इसलिए प्रभुपाद बता देते कि कलिजुग में जो प्राण वो अन्न में रहता है, है ना। तो अन्न में कोश, फिर प्राण में कोश, फिर मन, फिर ज्ञान विज्ञान, फिर अंत में आनंद में कोश। और जिस आनंद को तलाश हम करते हैं, हर व्यक्ति को संसार में आनंद चाहिए, लेकिन उसका शुरुआत कहाँ से होता है, अन्न में कोश से। तो अन्न से फिर रस मिलता है, रस से फिर रज बनता है, रज से फिर मांस, मांस से फिर मेधा, मेध से फिर अस्थि, अस्थि से फिर मज्ज, मज्ज से फिर शुक्र, शुक्र से बाद फिर ओज, ओज जैसे बाजार में कई सारे प्रकार के जड़ी बूटी की दवाई मिलते हैं, या बहुत प्रकार के विज्ञापन के माध्यम से ये बताया जाता है कि आप अभी बूढ़े नहीं हो, आप आपको और इंद्र तृप्ति कर सकते अगर आप इस दवाई का सेवन करेंगे तो, है ना। तो इस प्रकार से देखते हैं कि पूरे भारत में, विश्व में, तो ये जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है इसका इतना बढ़ापा, इतना बढ़ापा हो रहा है, खूब उसका मार्केटिंग होता है, है ना, केवल बुढ़ापा को छुपाने के लिए। लेकिन हम बुढ़ापा को नहीं छुपा सकते हैं। तो जिस प्रकार प्रभुपाद एक प्रवचन में बता रहे थे कि अगर व्यक्ति अपने शरीर, परिवार से और पत्नी, फिर बच्चे, संसार में, घर के, फिर इतना आसक्ति होता है, जिस आसक्ति कारण एक्चुअली उसको फिर से दूसरा जीवन लेना पड़ता है। तो प्रभुपाद जी के विदेश में एक मंदिर में दीक्षा की, सॉरी वो नया मंदिर का उद्घाटन कर रहे थे, तो उसमें दीक्षा की समारोह चल रहा था, बहुत सारे भक्त बैठे थे और कीर्तन हो रहा था। तो उस समय दिखाई पड़ा कि एक चूहा
वो एक कोने से निकल के दूसरे कोने से जाता है और दूसरे कोने से फिर इस कोने में आना जाना करता है, बिल्कुल निर्भय होके इतने सारे भक्त के बावजूद। तो भक्त लोग पूछे प्रभुपाद जी को कि प्रभुपाद जी क्या कारण हो सकता है, तो प्रभुपाद जी बताने लगे शायद पिछले जीवन में ये जो चूहा इस घर का मालिक होता है ना, तो इसलिए अभी इसको ये लग रहा है कि मेरे घर में ये लोग मेरा बिना अनुमति से ये क्या हंगामा कर रहे हैं, बिल्कुल निर्भय होके। तो प्रभुपाद जी कहा करते थे ये जो आसक्ति है ये केवल नहीं कि केवल मनुष्य जीवन में पाया जाता है, ये पशु और एक निम्न श्रेणी के जो जीवात्मा है उसके अंदर भी पाया जाता है। तो प्रभुपाद जी एक प्रवचन में बता रहे थे कि मैंने एक बार कानपुर में था, तो प्रभुपाद जी जहाँ रहते थे तो मैंने देखा कि बाहर खिड़की के बाहर पेड़ में एक बंदर बैठा था और बंदर से एक छोटा बच्चा उसके साथ मिलते थे, तो डाली में खेल रहा था। लेकिन मेरे पास कुछ खाद्य का द्रव्य था, खाद्य सामग्री था, तो जो बच्चा है वो बार बार प्रयास करता था कि कमरे में आके एक्चुअली उस खाद्य पदार्थ को प्राप्त करने के लिए, तो उसके माँ जो बिल्कुल उसके ऊपर कड़ी नजर रखती थी। लेकिन कुछ समय बाद में था कि जो बंदर का बच्चा था वो खिड़की से अंदर आ गया, और इस समय और बंदर एक्चुअली बिल्कुल भयभीत क्योंकि हमें खुद वहाँ पे था, और वो भी खिड़की के अंदर आ नहीं सकता, लेकिन वो इतना उसके अंदर इतना जो भय हुआ कि अभी मेरा बच्चा क्या हल होगा। तो लेकिन मैंने भी क्या करा, प्रयास करके इस बच्चे को मतलब जबरदस्ती खिड़की से बाहर निकला, तभी जो बंदर बिल्कुल आश्वस्त हुआ। तो प्रभुपाद कहते कि ये जो आसक्ति है ये हर जीवात्मा का अंदर है, ये हर शरीर में, ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल मनुष्य शरीर में प्राप्त होता है। और सबको चिंता रहती है, खास करके जो बुढ़ापा यहाँ पे जैसे बुढ़ापा मतलब प्रजर और उसके साथ ये बुढ़ापा काल कन्या और इसके साथ इतना बीमारी, तो इसलिए व्यक्ति को जो बुढ़ापा आता है वो बुढ़ापा जो जिसे बोलते हैं कि जन्म मृत्यु जरा और व्याधि दुख दोष अनुदर्शन, तो ये बुढ़ापा से ज्यादा उसको भय लगता है, क्योंकि बुढ़ापा जो वो भी एक तरह से भय है कि अभी मैं बूढ़ा हो गया, लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे ना, लोग मेरे प्रति ध्यान नहीं देंगे, तो इसलिए इतना भयभीत होता है। इसलिए वो तरह तरह की प्रयास करता है कि दिखाने के लिए कि मैं अभी भी बूढ़ा नहीं हूं। फिर प्रभुपाद जी प्रवचन में बता रहे थे कि जैसे एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु अपने इतने भाव विवर हो गए कि जब कभी वो समुद्र को देखते थे कि उनको यमुना कालिंदी की याद होता था। तो एक बार वो रात में निकलते अपने जहाँ पे रहते थे गंभीरा से निकल पड़े और जाके वो समुद्र जगन्नाथपुरी में समुद्र में छलन लगे, और वहां से वो तैरते तैरते करीब 30-35 किलोमीटर वो कोणार्क सूर्य मंदिर, सूर्य का मंदिर जो जहाँ पे चले गए, और प्रातःकाल में जो सारे भक्त लोग स्वरूप दामोदर राय रमन वगैरह देखे कि महाप्रभु कमरे में नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि महाप्रभु अपने हल्की दरवाजा बंद रहता था लेकिन फिर भी वो दरवाजा के छोटा सा छेद से वो निकल जाते थे, उनका शरीर को इतना सूक्ष्म बना देते थे। और कई बार वो जगन्नाथपुरी के मंदिर में सिंह द्वार है यहाँ पाया जाता था, उनका शरीर बिल्कुल एक जैसा हो जाता था, इतने भाव प्रकट करते थे। तो पूरे ढूंढने लगे पूरे पूरी शहर में, लेकिन कहीं नहीं उनको मिला दिखाई पड़ा। तो ढूंढते 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 एक्चुअली वो समुद्र के रास्ता में चलते रहे चलते रहे चलते रहे, तो आके जब कोणार्क में पहुंचे तो दिखाई पड़ा कि एक मछुआरा जो है वो बिल्कुल वो क्या करते हैं वो जोर जोर से एक्चुअली वर्क कीर्तन करता था, है ना, बहुत जोर जोर से आवाज करता था अपने प्रति। तो जो भक्त लोग देखे उसको समझ में कि जिसको किसी ने कोई भूख ने पकड़ा अपने प्रति, तो उसको वो फिर भक्त लोग जब उसको स्पर्श किए तो बिल्कुल डर गया और जोर जोर से चिन्ना लेने का पकड़ने लगा। तो फिर उनको भक्त लोगों ने पूछने लगे कि क्या हुआ अपने प्रति। तो उसने बताया लगा कि क्योंकि मछुआरा हूं मैं, जब जाल बिछाता उस जाल में जैसे बड़ा सा एक मछली मतलब ऐसे कोई भूत आ गया, और जब मैंने उसको स्पर्श किया तो एक्चुअली कि मेरे अंदर भी भूत प्रवेश कर लिया, इसलिए मैं आपको कहती हूँ। जोर से वो नाच रहा था कूद रहा था, तो भक्त लोग बोले कि कहाँ है भूत इतने, तो उसको दिखा ले। तो प्रभुपाद बताते कि जब उसने तो उसको पता चला कि मैं अभी भूत बन गया, और मैं भी भगवान का इतना नाम में मतलब भी हो गया कि अभी मेरा परिवार और मेरा बच्चे का ख्याल कौन रखेगा। प्रभुपाद वहां पे बताते हैं प्रवचन में कि मैं अगर इस प्रकार का व्यवहार करूंगा तो संसार से पूरा विरक्त होके तो मेरा बच्चा और मेरा पत्नी का देखभाल कौन करेगा, तो इसलिए बिल्कुल भयभीत होते हैं। और भक्त लोग ने उसको फिर थप्पड़ मारे तो फिर उसने अपने बाहर स्थिति में आ गया। तो प्रभुपाद बताते हैं कि ये जो आसक्ति है, ये आसक्ति इसने आसानी से छूटता नहीं मंत्री। तो प्रभुपाद जी एक और एक कहानी में बताते हैं कि एक बार एक चिड़िया जो पति मतलब पुरुष चिड़िया और उसके स्त्री और कहीं बच्चे थे, तो उसको बच्चे को एक शिकारी ने उसने पकड़ लिया जाल से। तो उनको बचाने के लिए उसके जो माँ है वो भी आके एक्चुअली वो उसमें फंस गया, और इसके बाद एक्चुअली उसका जो पिता था चिड़िया तो वो भी आगे बढ़ा के एक्चुअली कि मैं भी उनको जाके बचा दूंगा, लेकिन वो समझ गया कि मेरे बच्चे फंस गए, मेरा पत्नी भी फंस गया, और मैं भी जाऊंगा तो मैं भी फंस जाऊंगा, तो इसलिए मैं उनका उद्धार नहीं कर सकता हूँ, लेकिन तो इसलिए बुद्धिमान ये है कि मुझे भी संन्यास लेना चाहिए। प्रभुपाद जी लिखते कि ही टुक संन्यास, मतलब मैं संसार में जो लोग हैं जो मैं मेरा शक्ति से उनको बचा नहीं सकता हूँ, मैं भी फंस जाऊंगा, तो इसलिए बुद्धिमान ये है कि मुझे भी संन्यास लेना चाहिए, है ना, हम उनको उधार नहीं कर सकते हैं। तो ये जो आसक्ति बता रहे थे कि ये आसक्ति जो आ सकती है लेकिन जा नहीं सकती है ना, उसको जाने के लिए किसी साधु, तो इसलिए कपिल मुनि की शिक्षा है माता देवहूति को उसमें बता रहे थे कि ना प्रसंग अजरम पाशम आत्मा कवयो विदु स एव साधु कृत मुख्य द्वार अपावर्तम। केवल एक साधु का कृपा जब होता है, साधु के माध्यम से इस आसक्ति को हम काट सकते हैं। कई बार एक्चुअली आसक्ति क्या हो जाता है कि वो हमारा वो मिथ्या मतलब उसका दूसरा परिमाण होता है कि दुष्परिमाण होता है कि हम जैसे प्रभुपाद बताते कि श्मशान वैराग्य या मरकट वैराग्य या शुष्क वैराग्य फाल्गु वैराग्य। तो एक भक्त बता रहे थे कि दक्षिण भारत में श्री संप्रदाय में इस प्रकार एक गृहस्थ जीवन में एक व्यक्ति जीवन बिता रहे थे, तो उनको बहुत इच्छा था कि मुझे घर में गृहस्थ में भक्ति करना आगे बढ़ना तो बहुत बाधक होता है, तो इसलिए हमेशा ये चिंता था कि मेरा पत्नी अगर आपने देह त्याग कर देगी तो मुझे आसानी से संन्यास आश्रम में प्रवेश के लिए आसान हो जाएगा। तो ऐसा दिन आया कि उसकी पत्नी का देहांत हो गया, और दूसरे दिन ही अपने गुरु के पास वो चले गए और जाके बताया कि मैं अभी बिल्कुल संसार से विरक्त हूँ क्योंकि मेरे पत्नी का देहांत हो गया, तो अभी आप मुझे संन्यास दीजिए। तो उनके गुरुजी ने आपने बोला कि आपके पत्नी का वियोग हुआ है, बिल्कुल 24 घंटा भी नहीं हुआ, तो आपके आपको उनके प्रति थोड़ा सा भी सहानुभूति नहीं है। तो जिस व्यक्ति को इस प्रकार थोड़ा सा अगर ये नहीं है तो इस व्यक्ति वाला इस संसार में कैसे दूसरे का, क्योंकि जो आसक्ति हम अपने परिवार अपने संसार अपने बच्चे अपने संबंधी में प्राप्त देते हैं, उसी आसक्ति को हम भगवान के भक्तों भगवान के प्रति जब तक नहीं बढ़ता है तभी हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तब वो असली आसक्ति नहीं होगा। क्योंकि कुंती महारानी भी आपने सुंदर प्रार्थना में वो बताते हैं कि वृष्णिषु पांडुषु, क्योंकि मैं दोनों तरफ से भी रिश्तेदार हूँ, क्योंकि पांडव की तरफ से और यदुवंशी की तरफ से। तो इसलिए मैं आपको अभी अगर आज्ञा देता हूँ कि आप मुझे छोड़ के आप यदुवंशी के पास जाइए, तो मुझे दुख होता है। इस प्रकार मैं अगर आपको यहाँ पे मेरे पास रख, तो इस प्रकार उनको भी दुख होगा क्योंकि वो भी आपसे संबंधित है। तो इसलिए मेरा प्रार्थना यही है कि ये जो संबंध है, इस संबंध को आपने तोड़ दीजिए, है ना। तो एक आध्यात्मिक स्तर है, उस तरह को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, हाँ। लेकिन तो उस तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत विस्तृत रूप से वर्णन करते हैं कि जिस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे जो षड गोस्वामी है, तो षड गोस्वामी में आपने बहुत ही उनके शुरुआत का जीवन में, क्योंकि बहुत ही प्रखंड वो विद्वान थे, जिसके कारण राजा हुसैन शाह ने उनको अपने राज दरबार में उनको वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री के रूप में सेवा दिए, और वो इतने अच्छे सेवा कर रहे थे। लेकिन जब उनको महाप्रभु ने मिले और महाप्रभु ने उसका आदेश दिए कि आप अभी छोड़ के मुझे प्रयाग में मिल सकते हैं या काशी बनारस में, तो उन्होंने दादा वृंदावन चंद्रवाद, तो उन्होंने इतना आसानी से वो पद को त्याग करके, पूरे संसार को आसक्ति को त्याग करके वो मेरे शरण में आए। और उनका जीवन कैसा था एक्चुअली, कि बहुत ही ये वृंदावन में रहते थे एक्चुअली, बहुत ही तपस्या के रहते थे, तो उनको कोई कष्ट नहीं हो रहा था। क्योंकि उन्होंने क्या करता था कि एक आसक्ति को छोड़े, कुछ आसक्ति को छोड़े, और उन्होंने अपने जो आसक्ति भगवान के परिवार के प्रति जोड़ा। मतलब लिखते प्रभुपाद थी कि अनलेस अंटिल समबडी वाइडन्स हिज एक्टिविटीज, ब्रॉडन हिज एक्टिविटीज, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गिव अप द अदर एक्टिविटीज, परम दृष्टा निवर्तते। तो इस प्रकार प्रभुपाद बोलते थे कि जैसे महात्मा गांधी के आंदोलन में तो ऐसा एक व्यक्ति था चित्तरंजन दास, तभी बंगाल के बहुत ही बड़ी वकील था वो, तो उसका कमाई करीब 10,000 या 1,00,000 रुपया प्रभुपाद जी बताते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध वकील था। तो महात्मा गांधी ने उसको एक बार बोले कि मुझे अभी आपका पैसा नहीं चाहिए, आप चाहिए, है ना। तो उसने वो उसको महात्मा गांधी का इसको मतलब ये ना नहीं कर पाया था, चलिए उसने अपने नौकरी मतलब छोड़ के वो महात्मा गांधी के आंदोलन में चुक नहीं थे। प्रभुपाद जी लिखते कि एक महीना के अंदर उसका मृत्यु हो गया, है ना, वो ठीक नहीं ये है। क्योंकि जब तक हमारा आसक्ति भगवान के भक्त के प्रति नहीं है, भगवान के प्रति नहीं है, तब हम आसानी से नहीं छोड़ सकते हैं। तो प्रभुपाद जी और एक उदाहरण बताते, कहानी से बताते कि प्रभुपाद जी बताए कि मैं जब कलकत्ता में था, अरे पड़ोसी, तो एक बार मैंने देखा कि उसके जो पड़ोसी से जो एक भाई बुद्धा माता थी, तो उन्होंने दूसरे एक बच्चे को जोर से पिटाई कर रहे थे, तो जोर जोर से रो रहा था। तो मैंने पूछा मेरे नौकर को कि क्यों पिटाई कर रहे, तो उसने, मेरे नौकर ने बोला कि उसने क्या क्या था कि उसने जो जो बच्ची ने अपने छोटा भाई था, ये छोटा भाई को उसने परोटा खिला दिया। तो और जो छोटा जो भाई था, वो छोटा भाई जो उसको टाइफाइड का बीमारी था, इसलिए उसको मना किया गया था कि इसको किसी प्रकार का तला हुआ चीज नहीं देना चाहिए। लेकिन वो उसके जो स्नेह के कारण उसने बार बार मांग रहा था, इसलिए उसके अनुपस्थिति उसने उसने दे दिया, इसलिए माता ने उसको जोर से पिटाई की थी। तो प्रभुपाद जी बताते कि ये जो आसक्ति है, वो स्नेह है, वो सही नहीं है। इस प्रकार अर्जुन में भी उसी प्रकार का आसक्ति के कारण वो बता रहे थे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। इसलिए प्रभुपाद जी श्लोक में बताते कि यम यम व्यापी स्मरण भागते तजन तत्व कलेवरम तम तम व्याप्ति कौन थे सदा से विभापित। तो क्योंकि अर्जुन इतने परेशान था कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरा धर्म क्या होना चाहिए, मेरा सेवा, तो जो भगवान ने ये श्लोक अर्जुन को सुनाया है, तो अर्जुन बहुत खुश हो गए कि बोले बहुत ही अच्छा है, मुझे अभी युद्ध नहीं करना पड़ेगा, मुझे केवल क्या करना पड़ेगा, आपका स्मरण करना पड़ेगा। वो आसानी है, युद्ध करने से अच्छा है कि मैं आपका स्मरण करूंगा। तो लेकिन बाद में तुरंत भगवान ने बोलता है कि तस्मात सर्वेषु कालेषु मानुष्मर युद्ध चो, भगवान बोलते नहीं आपको क्या करना पड़ेगा कि युद्ध करते हुए आप मुझे स्मरण करना पड़ेगा। वो सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे लिए कि कार्य करते हुए हमारा अपने धर्म को निभाते हुए हम अगर भगवान को स्मरण कर पाएंगे तो फिर अंत काले चुमस्मरण लुप्ता कलेवरम। तो इसलिए प्रपाद ये हर व्यक्ति के चाहे गृहस्थ हो चाहे ब्रह्मचारी हो मानप्रस्थ संन्यास, तो विषय में वही एक प्रश्न बार बार उठता है कि हम कर पाएंगे कि नहीं। या हम देखते हैं कि ये तो यहाँ पे बताया गया कोई व्यक्ति बूढ़ा होता है और बुढ़ापे के बाद कई प्रकार के बीमारी उसको आक्रमण करते हैं, तो उस समय वो कैसे भगवान को याद कर सकता है। हम भी हमारे जीवन में देखते हैं कि थोड़ा सा अगर कोई बुखार होता है कि बुखार बढ़ जाता है, थोड़ा सा कोई चोट आता है तो हमको जप में बिल्कुल रुचि नहीं आता है, पढ़ने में रुचि नहीं आता है, सुनने में रुचि नहीं आता है, इतना कठिन होता है। तो अंतिम समय में कैसे हम भगवान का याद कर पाएंगे। लेकिन प्रभुपाद बताते कि आप अगर जीवन भर इसको प्रयास करते रहेंगे प्रामाणिक ढंग से एक प्रामाणिक रूप से, तो ये भगवान का सेवा है, भगवान का कार्य है कि वो अंतिम समय है वो आपको याद दिलाएंगे किसी न किसी माध्यम से। उसके लिए आपको प्रयत्न नहीं, केवल आपका अभी जो प्रयत्न करना चाहिए और अंतिम समय भगवान जो है वो आपको याद करते हैं। और दूसरी तरफ से हम देख सकते हैं कि भगवान कभी कभी या हमेशा हम देखते हैं कि इस प्रकार के जो संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि और त्रि ताप के द्वारा जीव को इस प्रकार का दुख में डाला जाता है ताकि ये समझने के लिए कि वो कितना नगण्य है, मतलब इनसिग्निफिकेंट है, कि मैं अपने प्रयास से कुछ नहीं कर सकता हूँ जब तक भगवान उसको सहायता नहीं करेंगे। तो इसलिए जीवात्मा को इस स्थिति में डाला जाता है ताकि ये समझने के लिए कि मैं अपने प्रयास से आगे बढ़ नहीं सकता हूँ, भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन भगवान। तो इसलिए बताया कि हमारा प्रयास और भगवान का कृपा है ना। तो यहाँ पे इसलिए जो प्रजरा फिर काल कन्या और जो बुढ़ापा और इसके इतने सारे जो शैन्य जो बीमारी के साथ तुलना किया जाता है, तो ये अगर इस प्रकार का इस व्यक्ति को चारों तरफ से अगर आक्रमण करेंगे और जिस समय उसका जो प्राण बिल्कुल जो संघर्ष जो लड़ाई जो शक्ति जो है बिल्कुल क्षीण हो चुके हैं, तो कैसे वो ऊपर आ सकता है। तो ये हम देखते थे कि प्रथम स्कंद में धृतराष्ट्र की जो आसक्ति था, तो धृतराष्ट्र का इतना आसक्ति था कि उसके सारे 100 के 100 बच्चे मारा गए है ना, लेकिन फिर भी वो खुद अंधा है और गांधारी, वो भी आपने आँख को पट्टी बांध के रखे है ना। तो इस स्थिति में भी वो क्या कर रहा था कि पूरा लड़ाई खत्म होने के बाद भी वो राज्य को भोग कर रहा था, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज इतने धर्मशील थे, तो उसी समय भी कि वो कभी धृतराष्ट्र को अपने शत्रु नहीं मानते थे है ना। वो प्रामाणिक ढंग से हर दिन धृतराष्ट्र युधिष्ठिर महाराज अपने जो प्रातःकाल के भगवान के सेवा पूजा करने के बाद वो आते थे, माता गांधारी और धृतराष्ट्र को अपने चरण स्पर्श करते थे, उनसे आशीर्वाद मांगते थे है ना। तो इस आशा से वो जीवित थे। लेकिन विदुर जो है अपने भाई के प्रति करुणा के कृपा के कारण वो जब घर छोड़ के गए थे, लेकिन फिर से वो आपस आए केवल इस धृतराष्ट्र को इस जो परिवार से इस स्थिति से निकालने के लिए। तो विदुर जी आए, उनको ऐसा प्रचार किए जैसे श्रीमद् भागवत में इतनी कड़ी शब्द से इसका वर्णन होता है कि आप जो है एक पालित कुत्ता जैसे, कुत्ता जिस प्रकार वो मालिक के द्वारा बंधा हुआ रहता है, जब तक मालिक उसको केवल इंतजार करते कि मालिक जब उसको भोजन देता है चाहे सुखार रोटी टुकड़े, तो उसके लिए वो जीवित रहता है कि एक्चुअली मालिक भोजन देंगे तो मैं ये करूंगा। तो इस प्रकार आपका जीवन भी इस प्रकार ये है, तो इस प्रकार उसको इतनी कड़ी जो संभाला ये, तो इसके प्रभाव से जो धृतराष्ट्र है, जो इतने साल तक असली अपने आसक्ति था घर के प्रति, परिवार के प्रति, लेकिन अभी तो परिवार चले गए थे लेकिन घर के प्रति आसक्ति था, तो ये संभव हो पाया केवल विदुर का अत्यंत कृपा या बोल सकते हैं। तो इसके कारण एक्चुअली वो चले गए। और फिर जब सुबह हुआ तो युधिष्ठिर महाराज आए, तो आए तो देखे कि माता गांधारी और उनके पिता धृतराष्ट्र और विदुर भी नहीं आते थे, तो इतना चिंतित हो गए, पूरा ढूंढने लगे, सोचने लगे कि कहाँ गए, इतनी बूढ़ा अवस्था में दोनों का आँख भी नहीं है तो कहाँ होते। तो उस समय नारद मुनि प्रकट होते और नारद मुनि बताते कि वो हिमालय पे कितर उत्तर की दिशा में गए, वो तपस्या करते हैं, आप निश्चित रहिए क्योंकि भगवान उनका देखभाल कर रहे हैं, वो उस समय तपस्थिति है। तो इस प्रकार हम भी अगर जिसकी खोज के लिए, जिस कृष्ण भावना मत की भगवान की खोज के लिए हम निकले, अपने परिवार रिश्तेदार सबको छोड़ के या उनको भगवान के सेवा में रखते हैं, तो हम इस दिशा इस रास्ता में हमको भी एक दृढ़ता से सत्य सेवा करना चाहिए, तो आगे जाके हमारा भी ये साक्षात्कार होगा कि किस प्रकार भगवान हमारा देखभाल कर रहे हैं और आगे जाके भगवान हमारा देखभाल करेंगे एक्चुअली। इसलिए हमको कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। अगर हम प्रामाणिक ढंग से एक प्रामाणिक गुरु के आश्रय से अगर हम करते रहेंगे तो हमारे अंदर भी ये साक्षात्कार होगा कि भगवान हमको एक दिन प्राप्त होंगे। तो इस आशा से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जैसे बताया गया कि यहाँ 50 साल पूरा हो चुका है, तो मेरा भी 50 साल पूरा हो चुका है, देखिए फिर भी कोई साक्षात्कार नहीं है, केवल गुरु और कृष्ण के आदेश से, वरिष्ठ जो उनके आदेश से हम कुछ इधर उधर कुछ तोड़ मोड़ जो भी कर रहे हैं, है ना, तो अगर उसको और भक्त लोग भी उसको सहन करते आ रहे और आशा है कि आगे करते रहेंगे, तो इस आशा से हम प्रार्थना करते हैं प्रभुपाद जी और सारे आचार्यों, क्योंकि हम भी उस रास्ता में सही रास्ता सही मार्गदर्शन होगा। ग्रंथराशिमत भागवतम महापुराण की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। गौर प्रेमानंदे।